today lecture given by Mr. Rukmini Kishore ji, and today is Thursday. Shlok Sankhya 4, 21, 25.
कड़ा दंड पा सकता है, किंतु वे इनसे प्रभावित नहीं होंगे। ओम ॐ ज्ञानदमिरं तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै हरे कृष्ण। तो आप सबका आज के भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है महाराजा पृथु द्वारा उपदेश।
इससे पिछले अध्याय में चर्चा की गई थी कि महाराजा पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु आए थे और किस ढंग से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ था और महाराजा पृथु से उनका साक्षात्कार हुआ। अब महाराजा पृथु एक यज्ञ कर रहे हैं। आप सब थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, अभी काफी स्कोप है आगे आने का, थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं।
तो महाराजा पृथु अब यज्ञ कर रहे हैं और प्रजा को वो उपदेश दे रहे हैं। तो कल के श्लोक में महाराजा पृथु ने ये कहा था प्रजा से कि जो राजा अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा ना देकर उनसे केवल कर वसूलता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसे अवनति के साथ ही राजा को अपनी संपत्ति भी जाती रहती है। मतलब कि जो राजनेता है आज के समय में, अगर वो केवल प्रजा से कर ही वसूल कर रहे हैं और उनको ये प्रेरित नहीं कर रहे कि वो वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तो ऐसे राजाओं को, ऐसे राजनेताओं को प्रजा के द्वारा जितने भी पाप किए जा रहे हैं उसका फल भुगतना पड़ता है और उनकी अवनति होती है। बताया गया है 1/6 जितने हमारे कर्म होंगे उनका 1/6 हिस्सा राजा को लगता है। तो जैसे कल चर्चा कर रहे थे, अरबों की आबादी है और राजा लोग आजकल कोई वैदिक शास्त्रों का पालन स्वयं कर रहे हैं, ना ही वो प्रजा को प्रेरित कर रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों का पालन करें। तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है। और ऐसे राजनेता बनने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, यानी कि नर्क में जाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना धन लगा रहे हैं, कितनी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, किस लिए कि नर्क में जाएंगे। सारी अज्ञानता है, उनको ये नहीं मालूम कि अगर उन्होंने वैदिक शास्त्रों के अनुसार राज्य नहीं किया, नागरिकों को वैदिक शास्त्रों के लिए प्रेरित नहीं किया, तो सब जो पाप किए जा रहे हैं, कुकर्म किए जा रहे हैं उनके राज्य में, सबका रिएक्शन उनको मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं आज राजा पृथु, पहले ये बात कही कल, और इसलिए कह रहे हैं तत्, इसलिए अतः हे प्रजागण, तत् प्रजा वृत पिंडार्थ, वृत मीन्स राजा, मैं आपका पालन करने वाला हूं, पिंडार्थ मेरे मरने के बाद अगर आप चाहते हो मेरा भला हो, स्वात मेवा सुयव, तो बिना ईर्ष्या के और अपने हित के लिए भी कुरुत अध्यक्ष दिए तर ही मैं अनुग्रह कृता, कि कृपया करके कृष्ण का चिंतन करते हुए मेरे पे कृपा करो। राजा पृथु कह रहे हैं कि मेरे पे कृपा करो, क्या कृपा करो कि अपने वर्ण और आश्रम का पालन करो। राजा प्रजा से कह रहे हैं प्रार्थना करके कि आप अपने वर्ण और आश्रम का पालन करो, ये आपकी मेरे पर बहुत कृपा होगी। कैसी कृपा होगी? क्योंकि अगर आप वर्ण और आश्रम का पालन कर लेंगे तो मेरी मृत्यु के बाद मेरा बुरा नहीं होगा, पिंडार्थ जो अच्छा ही होगा, क्योंकि यही मेरी सेवा है कि मुझे अपने नागरिकों को वर्ण आश्रम का पालन करवाना चाहिए। तो इस श्लोक से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। देखिए जो राजा है, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि वो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान का प्रतिनिधि का अर्थ है कि जो भगवान का कार्य है उसको इस पृथ्वी पर वही कार्य करना है। भगवान का क्या कार्य है? भगवान का ये कार्य है, उनका ये मिशन है कि इस भौतिक जगत में जो बदजीव हैं उनका उद्धार हो और वापस भगवत धाम आए, और जब तक वो इस भौतिक जगत में हैं इनकी भौतिक देखरेख, इनका भौतिक पालन भी होता रहे। जिस ढंग से सरकार कैदियों के लिए उनकी आहार निद्रा का सब ख्याल रखती है, उसी ढंग से भगवान जब हमें इस जेल खाने में भेजते हैं तो प्रत्येक जीव के लिए आहार निद्रा भय मैथुन का पूरा पूरा प्रबंध है, और साथ में भगवान शास्त्र छोड़ते हैं, साधुओं को भेजते हैं कि इनका आध्यात्मिक उद्धार भी हो। तो इसीलिए प्रत्येक राजा का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि उनके अंदर जो प्रजा है, प्रजा शब्द का अर्थ केवल मनुष्य ही नहीं है, प्रजा शब्द का अर्थ है कि जिनका जन्म हो, यानी कि सब तरह की योनियां, कीड़े मकोड़े पेड़ जलचर सब तरह की योनियों के जो उत्तरदायित्व है वो राजा का है, उनका उद्धार होना चाहिए। तो उनका भौतिक उद्धार भी हो, देखभाल हो, और उनका आध्यात्मिक भी देखभाल हो, ये है राजा का कर्तव्य। भागवतम में कथा आती है महाराजा शिबी की, जब महाराजा शिबी के पास एक बारी एक कबूतर घायल अवस्था में आया, उस कबूतर के ऊपर एक गिद्ध आक्रमण कर रहा था, तो उस कबूतर ने कहा कि मैं आपकी प्रजा हूं और आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। तो महाराजा शिबी ने तुरंत अपना उत्तरदायित्व समझा और गिद्ध को उस कबूतर को खाने से रोका। गिद्ध ने कहा मैं भी आपकी प्रजा में हूं तो मेरा भी आपको उद्धार करना है, मैं क्या खाऊंगा। तो फिर राजा शिबी ने क्या कहा कि जितना तुम्हें कबूतर का मांस चाहिए मैं अपने शरीर से तुम्हें मांस दूंगा। तो एक तराजू में एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा शिबी ने अपने शरीर से मांस निकाल कर डाला। जितना वो मांस जाते जा रहे थे उतना ही कबूतर का वजन बढ़ता जा रहा था, और जब काफी शरीर का मांस उन्होंने डाल दिया तब वो जो कबूतर और गिद्ध थे वो वास्तव में देवता थे और वो राजा शिबी की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन देखिए कितना सुंदर चरित्र है राजा शिबी का कि वो कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस देने को तैयार हो गए। और आज के राजनेताओं के अगर यही दृश्य आता, कबूतर उनके पास छटपटाते हुए आता, बोले गिद्ध क्यों मैं ही खा जाऊंगा तुम्हें, मेरी शरण में आया मैं ही खा जाऊंगा, वो खा जाते उसको। क्योंकि आजकल सब राजा कबूतर और तो क्या गायों की हत्या कर रहे हैं, उनको क्या शर्म है। तो ये है उस समय का चरित्र। और बताया कि अगर राजा ऐसा नहीं करेगा तो उसको प्रकृति के कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। भागवतों के पांचवें स्कंद में बताया गया है कि जो राजनेता सही ढंग से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते उनको शुकर मुख नर्क में जाना पड़ता है। नर्क का नाम भी बताया गया है। अगर कोई यहाँ पे आजकल राजनेता इलेक्शन लड़ रहा हो, वोट फॉर देश वोट को बोलना चाहिए आप प्रधानमंत्री घर में नहीं जा रहे हैं, कुछ सालों के बाद शुकर मुख नर्क में जाएंगे। वहां जाने के लिए आप इतनी फाइट कर रहे हो। और फिर वहां पे बताया गया है शुकर मुख नर्क में क्या होता है। शुकर मुख नर्क में ऐसा होता है कि उन राजनेताओं को एक मशीन के बीच में से निकाला जाता है, जैसे गन्ना चूसने की मशीन होती है, एक तरफ से गन्ना डाला जाता है दूसरे ढंग से बिल्कुल पिसा हुआ निकलता है। इसी ढंग से इन राजनेताओं को बड़े बड़े बोलर्स के बीच में ऐसे दबाया जाता है और फिर उनका कुछ उम्र निकल के फिर वो बाहर निकलते हैं। कोई यातना शरीर में इतना उनको पीड़ा सहनी पड़ती है अगर वो अपने करने का सही प्रयोग नहीं करते, तो ये बहुत ही खतरनाक है। भागवतम के ज्ञान स्कंद में बताया गया है या एवं पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव ईश्वर ना भजंती अब जानती स्थान भ्रष्ट पतंती अदा, कि अगर हम वनाश्रम का पूरा शक्ति से पालन करते रहे लेकिन कृष्ण भाना भाविक ना हो, ना भजंती अब जानती स्थान भ्रष्ट पतंती अदा, तो हालांकि हम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन कृष्णा भावना भावित नहीं है, स्थाना भ्रष्टा पतंती अदा, हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे, यानी कि हम निम्न योनियों की तरफ जाएंगे। अगर हम हो सकता है हम अपने कर्तव्यों का सही सही पालन कर रहे हों लेकिन अगर हम कृष्णा भावना भावित नहीं है तो हम निम्न योनियों में निश्चित रूप से जाएंगे, स्थाना भ्रष्टा पतंती अदा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को ये ज्ञान दे। इंग्लिश के भागवतों में बहुत सुंदर लिखा श्री प्रभुपाद जी ने, जो इसमें हिंदी में इतने सुंदर तरीके से नहीं आए, उसमें लिखा है कि द एवरी गवर्नमेंट शुड विग्रसली वर्क टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए कृष्णा भावना भावित के प्रयास प्रचार के लिए। हर सरकार का ये कर्तव्य है कि कृष्णा भावना का प्रचार बहुत ही जोर शोर से करे ताकि हरेक जीव कृष्णा भावना भावित हो जाए। ये दृश्य हमें देखने को मिलता है महाराजा अम्बरीश के राज्य में। महाराजा अम्बरीश स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनकी पूरी की पूरी प्रजा श्रवण और कीर्तन करते जाते थे। महाराजा अम्बरीश तो शुद्ध भक्त थे ही थे, उनकी प्रजा में से भी कोई भी इंद्रतृप्ति के विषय के बारे में सोचता कभी नहीं था। उनके जीवन का लक्ष्य स्वर्ग लोक में जाना था ही नहीं, पूरी प्रजा का एक ही लक्ष्य था कि भगवान के धाम वापस आना है। कल्पना कीजिए कि आज हमारे दिल्ली राज्य में कम से कम, दिल्ली राज्य में छोड़े एक घर के अंदर ही कम से कम, अगर पूरे परिवार वालों का यही लक्ष्य हो जाए कि भगवान धाम वापस आना है, कितना सुंदर दृश्य होगा। और पूरा परिवार नहीं, पूरी कॉलोनी नहीं, पूरा नगर नहीं, पूरी पृथ्वी, महाराजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी में जितने भी जीव हैं सबका यही लक्ष्य है, नहीं स्वर्ग नहीं चाहिए, इंद्रतृप्ति नहीं चाहिए, भगवत धाम वापस जाते हैं। तो वो फिर भौतिक जगत कहाँ रह गया, वो वैकुंठ ही। तो ये कर्तव्य है राजा का कि इस तरह के वैकुंठ को हमने यहाँ बनाना है, और जब तक हम कृष्णा भावना भावित नहीं होंगे, हम कभी भी उत्तरदायित्व, जैसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं नेवर बी रिस्पॉन्सिबल। श्रीला प्रभुपाद कहते थे वन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस इज अ वन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस ही इज अ रास्कल। सीधा सीधा श्रीला प्रभुपाद कहते थे, चाहे वो राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अगर वो कृष्णा भावना भावित नहीं है तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, रास्कल। जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो वहां पर एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर उनसे इंटरव्यू लेने आए। वो कहते हैं, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप कहते हैं कि आपके हर बात का आपके पास समाधान है, तो अमेरिका में इतना क्राइम बढ़ रहा है, इसका क्या समाधान है? श्रीला प्रभुपाद ने साफ बात की कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब तक आप कृष्णा भावना भावित नहीं होंगे, आप नए नए कानून जितना मर्जी बनाते रहिए, कोई भी कानून लोगों को रोक नहीं सकता पाप करने के लिए, जब तक कि उनके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त ना किया जाए। जैसे भागवत के पाठ्य में बताया गया है, यस्य भगवती भक्ति भक्ति अधोक्षज सर्वस्व गुण तत्व समासते सुरा, कि जो भगवान अधोक्षज की भक्ति में जुड़ते हैं उनके अंदर देवताओं के सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो अपने आप हमारे अंदर सारे अच्छे गुण हो जाएंगे, तो फिर सरकार का कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा, ये सब जेल खाने सब खाली हो जाएगा, कोई नए नए नियम नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही सब नागरिक नियमों का पालन करेंगे। तो इस श्लोक में हमें देखना है कि पृथ्वी महाराज किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सूक्ष्म बात है, इससे पहले जब पृथ्वी महाराज ने अपना संदेश शुरू किया 21वें श्लोक में, तो उन्होंने कहा हे सभासदो आप सबका कल्याण हो, जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हैं वे मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने, जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो वह भद्र पुरुषों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। और आज के श्लोक में कितनी विनम्रता से वो प्रजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वर्णाश्रम का पालन करो और मुझ पर कृपा करो। देखिए इससे हमें मालूम चलता है कि महाराजा पृथ्वी कितने विनम्र है, कितनी दीनता इसमें प्रकट हो रही है। वो पूरे पृथ्वी के राजा है, इससे पहले वो लगभग 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, उनके यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, स्वयं भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया, फिर वो राजा बनने के बाद दूसरा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें कि बड़े सब देवतागण बड़े बड़े ऋषिगण आए हैं, और यही राजा पृथु हैं जिन्होंने अपने धनुष की नोक से पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया। इतने पराक्रमी जिनका भगवान से साक्षात स्वयं भेंट हुई है, और बड़े बड़े लोग मुनिगण देवतागण उनकी सभा में उपस्थित हैं, फिर भी कितनी विनम्रता और कितनी दीनता दिखा रहे हैं महाराजा पृथु। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितने ही बड़े लीडर क्यों ना बन जाए, नेता क्यों ना बन जाए, बड़े से बड़ा लीडर होने का अर्थ है जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा सेवक है। जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक जगत में इस संस्था में या हमें जितनी ज्यादा हमें ऊंची पदवी मिलती है वो पदवी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमें उतना ही ज्यादा सेवा करने का अवसर मिल रहा है, हमें उसको सेवा के भाव से ही लेना है, क्योंकि हम भगवान को केवल अपनी दीनता और विनम्रता से ही आकर्षित कर सकते हैं। हम भगवान को ये कहकर आकर्षित नहीं कर सकते देखो मेरा कितना ऊंचा पद है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ का ये कंट्रोलर हूँ, नहीं, हम भगवान को केवल अपनी दीनता और विनम्रता से ही आकर्षित कर सकते हैं। देखिए हम सब लोग इस कौन का संस्था है, एक प्रचार की संस्था है, हम सबको प्रचार करने की मुख्य सेवा है, तो जब भी हम प्रचार करें तो हमें माता पिता को सीखना चाहिए कि माता पिता अपनी प्रजा को प्रचार ही कर रहे हैं कि आप वैदिक नियमों का पालन करो, तो हम भी यही करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वैदिक नियमों का पालन करो, लेकिन ये सीखना है कि किस चेतना में माता पिता बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। इसलिए जब हमें अवसर मिले किसी जनसमूह को प्रचार करने के लिए तो हमें मानसिक रूप से उन सबके चरणों की धूल को अपने सर पे लगाना चाहिए कि हमें इतना अच्छा अवसर मिल रहा है भगवान का संदेश बताने के लिए। हमें प्रचार इस बात से नहीं करना चाहिए कि आप सब तो अज्ञानी हैं, आपसे ज्यादा तो मैं जानता हूं, सुनो ये बात, आप मूर्ख हो, पशु हो। हालांकि प्रचार करते समय ये बात बोलनी पड़ती है, लेकिन अंतर जो भाव है वो सेवा का ही रहना चाहिए। उनको हीन समझ कर और अपने आप को ऊंचा समझ के प्रचार नहीं होगा। बड़े ही हीन दीनता से उन सबके चरणों को अपने सर पर छूते हुए, क्योंकि तो इतना अच्छा अवसर मिल रहा है कि हम भगवान के संदेश को दोहरा पा रहे हैं, तो इस भावना से, इस विनम्रता से हमें प्रचार करना चाहिए। और हम देखते हैं श्री भक्तिदास शशि ठाकुर, जिनको सिंह गुरु कहा जाता था, सिंह गुरु, गरजते थे वो शेरों की तरह, लेकिन जब कोई शिष्य उनके पास आकर उनको प्रणाम करता था तो क्या बोलते थे वासी में, दासो अस्मि, कि मैं आपका दास हूं। इसी ढंग से श्रीला प्रभुपाद जी जब हिप्पी लोग उनके पास आए तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कहा कि मेरे गुरु महाराज ने आपको मेरे पास भेजा है ताकि मैं उनके इस मिशन को पूरा कर पाऊं। वो कह रहे थे गुरु महाराज की विशेष कृपा है, आप उनके भेजे विशेष दूर दो और मुझे अवसर दे रहे हो कि मैं उनकी इच्छा को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा कर पाऊं। तो ये होता है एक वैष्णव का मूड। इसमें बात में याद आती है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, एक बार हमारे गुरु महाराज इंसोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ मुझे अवसर मिला था कि मैं आपके साथ मिलाने गया था और उससे वापस आ रहा था। तो महाराज का बहुत ही बिजी शेड्यूल था, बिल्कुल वो वैसे ही बहुत लेट हो गए थे, रास्ते में बहादुरगढ़ रुकते हुए आए, फिर बड़े मंदिर में मीटिंग थी उनकी, बहुत ही बिजी शेड्यूल, ऑलरेडी लेट, और बिल्कुल मेरे घर के आगे से निकल रहे थे। तो कभी तक मेरे महाराज के कोई घर में आए नहीं थे और मेरी जो माता जी थी वो बीमार थी। मेरे हृदय में इच्छा हुई कि एक बार महाराज दर्शन दे रहे, तो बड़े डरते डरते मैंने यही प्रार्थना की, मानो बहुत लेट है, फोन पे फोन आ रहे हैं ये सब, बहुत ही डरते डरते मैंने प्रार्थना की कि अगर संभव होती तो कोई बात नहीं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। महाराज ने बोला वाई नॉट, आई एम हेयर टू सर्व द वैष्णवास, कि मैं क्यों नहीं, जरूर चाहूंगा मैं तो यहाँ पे, हालांकि हम मैं वैष्णव ही नहीं, बोलेंगे महाराज का भाव देखिए कि आई एम हेयर टू सर्व द वैष्णव, और फिर आए घर में कि मैं तो भक्तों की सेवा के लिए तो हूं यहाँ पे और किस लिए। और घर में आए और माता जी थी मेरी, वो बीमार थी, माता जी को क्या मालूम कि महाराज जी कौन क्या स्तर है कि जीवी सिंह इतने बिजी हैं और क्या है। फिर आराम से बोलते हैं कि स्वामी जी कुछ कीर्तन कर दो। और देखिए महाराज जी बिजी हैं कुछ हैं, और देखिए उनकी विनम्रता देखिए कि वो एक जीव है जो कि इस समय रुग्ण अवस्था में है, किसी न किसी ढंग से इसको कृष्ण देना चाहिए। तो महाराज जी स्वयं ताली बजा के हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन शुरू कर रहे हैं। है ये देखिए कि इतने बिजी शेड्यूल और इतने देखा जाए तो कितनी ऊंची स्थिति है, बोले जीबीसी लीडर हैं और एक छोटे से शिष्य के घर में आए और उनकी माता जी कभी जानते नहीं, उनको लिए वो कीर्तन कर रहे हैं, कोई ऐसा सेटअप नहीं, कुछ इतने बिजी हैं। तो इससे हमें सीखने को मिलता है आचार्यों से कि अपने उदाहरण से वो सिखा रहे हैं कि लीडर का अर्थ है सेवक, चाहे हम जो मर्जी लीडर बन जाए, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, जीवन स्वरूप हो गए कृष्णा जिंदे दास। तो जितनी जल्दी हमें ऊंची स्थिति मिलती है, महाराज भी तो यही कह रहे हैं कि मैं राजा हूं लेकिन आप सबका सेवक हूं। तो हम जितना भी ऊंचा बढ़ते रहे लेकिन हमारे वास्तविक भाव ये रहना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाऊं। तो देखिए आश्रम में देखा जाए, अगर आत्मा का अर्थ है सेवक तो परमात्मा का क्या अर्थ हुआ, परम सेवक। और देखिए ना परमात्मा कितनी सेवा कर रहे हैं, मनुष्यों की नहीं, हर एक जीव की, एक चींटी के हृदय में भगवान खड़े रहते हैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हम लोग तो विश्राम करते हैं सो जाते हैं, नहीं परमात्मा हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं इनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सेवक हैं, कृष्ण को परम भोक्ता बोला गया है लेकिन वो है वास्तव में देखा जाए तो परम सेवक। गोपियों के साथ वो रास कर रहे हैं, भोग की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, गोपियों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों को अपने सर पे लगा रहे हैं। तो एक सर्वियस इंडस्ट्री है, भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, बस यही आनंद है। स्वयं कृष्ण नंद महाराज जी की पादुकाओं को अपने सर पे लाके आ रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, नंद महाराज के पादुकाओं को अपने सर पे रख के चल रहे हैं। तो जब भगवान सेवक हैं, परम सेवक हैं, हम उनके अंश हैं, तो हमें क्यों नहीं सेवक होना चाहिए? कृष्ण के रूप में, परम भोक्ता के रूप में भी सेवक हैं, परमात्मा के रूप में भी सेवक हैं, हम उनके अंश हैं, हम क्यों भोक्ता बनना चाहते हैं? हमेशा भोक्ता बनना चाहते हैं, तो वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। इसलिए जब भी हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, साथ में ही बहुत ही डर, बहुत ही द्वेष, सब कुछ आ जाता है, तो हम सही ढंग से भोग भी नहीं कर पाते। स्वयं भगवान अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, अपने लीलाओं से सिखा रहे हैं कि मैं सेवक हूं, तुम भी सेवक बनो। इसी सेवा में ही, एक दूसरे की सेवा में ही हमें आनंद मिलेगा। देखिएगा किस ढंग से प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जी को आदेश दिया कि आप जाइए जगह घर घर जाके प्रचार कीजिए। अब नित्यानंद प्रभु अवधूत शिरोमणि है, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं हैं। कभी भी वो नग्न अवस्था में आ जाते थे, कुछ भी कर लेते थे। किसी भी स्त्री को बोलते थे कि मुझसे विवाह कर लो, और चैतन्य महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया। कुछ भी करने में समर्थ, कुछ भी। कोई स्वयं बलराम जी हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं। लेकिन जब वो प्रचार के लिए निकलते थे तो कैसे निकलते थे? लोचनदास ठाकुर जी का भजन है, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिछेन बिलैया, जारे देखो तारे कहो दंते तीड़ धरी, अमर कीनी अलह बोलो गौर हरी। कहते थे वे जिसे भी देखते थे उससे अत्यंत ही दीनता पूर्वक कहते थे, अरे भाई तुम मात एक बार गौर हरी बोलकर मुझे खरीद लो। ऐसा कहते हुए जब वे प्रेम से आविष्ट होकर जमीन पर लौटते थे, जमीन पर गिर जाते थे और लौटने लगते थे। वे नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं, अधम और पतित जीवों के घर घर जाकर उन्हें हरिनाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं। दांतों में तिनका दांत का ही अर्थ है कि बहुत ही विनम्रता से कह रहे हैं कि एक बार हरि बोल दो, एक बार गौर हरि बोल दो। कुछ भी करने में समर्थ है, लेकिन उनका भाव देखिए, जा रहे हैं एक बार गौर हरि बोल दो। तो हम लोग भी नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में है, गुरु नित्यानंद प्रभु प्रतिनिधि है, हम सबको भी आदेश है प्रचार करो तो सीखना है। हो सकता है प्रचार करते समय हमें कई बारी बहुत ही गर्जना पड़ता है, बहुत ही कठोर कठोर बातें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन भाव कभी नहीं बोलना चाहिए कि सेवा के भाव से कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से इन जीवों को हमें कृष्ण के प्रति आकृष्ट करना है। जब तक हम सेवा के भाव से रहेंगे तो तभी हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर तभी जो श्लोक में दो मुख्य शब्द हैं, एक तो बता दें श्री प्रभुपाद जी, अधोक्षज धीय यानी कि कृष्णा भावनावृत होना, और दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है अनसूयवा। अनसूय का अर्थ है बिल्कुल ईर्ष्या से रहित होकर। देखिए हम सब लोग अभी बद्ध जीव हैं, और हम सब की ये प्रवृत्ति है कि हम भौतिक प्रकृति पर अपना सामित्व जमाएं। वी वॉन्ट टू बी कंट्रोलर, हम नियंता बनना चाहते हैं। तो इस आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी ये प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती, तो हमें भी चाहता है कि इस आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भी हमें कोई पोजीशन मिले, कुछ लीडरशिप हो, कुछ लोग मेरा कहना माने, मैं कुछ कंट्रोल कर सकूं। ये हम सबके अंदर रहता है। अगर हम इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए, ये पदवी मिल जाए, तो जितना ऊंचा हम पहुंचेंगे इस चेतना के साथ, उतने ज्यादा हम अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। हम अपनी पदवी से हमेशा आसक्त होंगे कि कोई छीन ना ले इसको, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। हम इसको यही सोचेंगे कि गुरु और कृष्ण की कृपा है, हम सोचेंगे नहीं मैंने इतनी तिकड़नबाजी की है इसलिए मुझे मिला, तो हम बहुत इससे आसक्त हो जाएंगे, और जितना आसक्त होंगे उतना हम डरे हुए रहेंगे, ईर्ष्या से रहेंगे। लेकिन हम ये सोचें कि कृष्ण तो सुप्रीम कंट्रोलर, मैं तो करने वाला हूं नहीं, ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा से मुझे सेवा मिल गई है, इस चेतना में रहेंगे तो हम ईर्ष्या से सही रहेंगे। हमें जब भी कोई सेवा मिलती है तो हम उस सेवा को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस सेवा को सेवा के भाव से नहीं करेंगे और करेंगे नहीं मुझे करके दिखाना है, जब इस भाव से करेंगे फिर हम किसी और को अच्छा सेवा करते हुए देखेंगे तो हमारे अंदर स्पर्धा शुरू हो जाएगी, कॉम्पिटिशन शुरू, ये कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए। मैं सबसे अच्छा कीर्तन करता हूं, एक और नया भक्त आया वो अच्छा कीर्तन करता है, तो एक स्पर्धा शुरू हो जाती है कि ये ऐसा ना हो कि इसको अच्छा कीर्तन करना माना गया, तो एक जेलसी, एक द्वेष भावना वहीं शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये जान लूं कि मैं तो केवल दास हूं और हम सब एक दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रभु, ये मेरे मालिक है। तो सेवक को मालिक से आगे बढ़ने की सुविधा करनी नहीं चाहिए। अगर हम ये चेतना रखेंगे कि मैं अच्छे ढंग से सेवा करूं और मेरी सेवा को देखकर सारे दूसरे उत्साहित हों और इतने उत्साहित हो जाए कि वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी सेवा करें, तो ये देखकर मुझे और खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए कि देखो इसने मुझसे भी ज्यादा अच्छी सेवा कर ली। तो पृथ्वी महाराज यहां बता रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं अपनी जन प्रजा से, कृपया करके आप प्लीज उनको उत्साहित कर रहे हैं कि आप वन आश्रम का पालन करो, अगर आप करोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस ढंग से इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि दूसरा उत्साहित हो जाए और अच्छी सेवा करने के लिए। तो इससे फिर मैं और अच्छी सेवा करूंगा, और उत्साहित हो जाए कि वो और अच्छी सेवा करे। तो ये है वैकुंठ, ये इसमें हमें असली आनंद मिलेगा, ये आत्मा का असली आनंद है। लेकिन जब तक हम उस स्वामित्व के भाव से सेवा करेंगे तो हमें कुछ आनंद तो मिलेगा, लेकिन वो आनंद क्या है कि हमारी जो अहंकार है उसकी पुष्टि हो रही है, हमें कुछ प्रेस्टीज मिल रहा है, कुछ मान मिल रहा है, तो उसकी पुष्टि हो रही है, वो आत्मा का आनंद नहीं है। और उस आनंद के साथ हमेशा हम भयभीत भी रहेंगे और ईर्ष्या से भी युक्त रहेंगे। लेकिन अगर हम आत्मा के स्तर पर आने का प्रयास करें, सेवा के भाव से करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमें आत्मा का स्तर का आनंद प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब भी किसी भक्त पर विशेष कृपा करते थे तो बाकी के बारे साकी बाकी जितने भी भक्त होते थे वो बहुत आनंद आता था उनको कि अरे इस भक्त पे महाप्रभु ने विशेष कृपा कर दी, नित्यानंद प्रभु ने विशेष कृपा कर दी। रघुनाथ गोस्वामी जी के ऊपर के शीश पे जब नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रखे तो उसमें वहां पे कौन कौन बसे थे, राघव पंडित बहुत प्रसन्न हुए कि अरे वाह, अब आपको कृपा मिल गई। जब रूप गोस्वामी जी पुरी में मिलने गए चैतन्य महाप्रभु से, तो रूप गोस्वामी जी उसे आलिंगन के कृपा में सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए कि रूप गोस्वामी जी को विशेष कृपा मिल रही है। तो सारे के सारे भक्त ये प्रसन्न होते थे कि इनको महाप्रभु की विशेष कृपा मिल रही है। उनके अंदर ये द्वेष उत्पन्न नहीं होता था कि महाप्रभु इस पर ज्यादा कृपा क्यों कर रहे, मुझ पर क्यों नहीं कर रहे, ऐसे हम लोग हो जाते हैं कि गुरु महाराज इनको ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे, गुरु महाराज को पता ही नहीं गई कितने निकृष्ट हैं, कितने बेकार बेकार बातें करते हैं, इन पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि किसी को वैष्णव के गुरु की कृपा मिल रही है तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, किसको विशेष कृपा मिल रही है। हमें भी कृपा मिले तो हमें ऐसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए जाकर कि आपको आपको भगवान ने चुना है कृपा का पात्र, तो आपकी सेवा करेंगे तो हमें भी कृपा मिलेगी। जब हम दूसरों को आध्यात्मिक प्रगति करते हुए देखें तो हमें खूब प्रसन्न होना चाहिए। क्यों प्रसन्न होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई जीव आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है इसका मतलब कृष्ण उससे प्रसन्न हो गई, तो मुझे यह सोचकर ही प्रसन्न हो जाना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न है इस समय, मैं सेवक हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, अभी तक मेरे जीवन का लक्ष्य है मुझको प्रसन्न करना, मेरी प्रसन्नता में कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। वास्तव में होना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। किसी भी जीव ने अगर कृष्ण को प्रसन्न कर दिया तो मुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए, वाह हमारे स्वामी प्रसन्न हो गए। नहीं, जब कृष्ण ये देखेंगे कि किसी और की सेवा से मैं प्रसन्न हो रहा हूं इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो गए हैं, तो कृष्ण फिर मुझ पर भी कृपा करेंगे और मैं भी माध्यम बनूंगा सेवा करने का। लेकिन अगर मैं दूसरे को अच्छी सेवा करते हुए देखकर ईर्ष्या से युक्त हो जाऊं कि ये क्या कर रहा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, मैं ऐसी अच्छी सेवा कर सकता हूं, मुझे पूरा मान नहीं मिल रहा, लोग मुझे पहचान नहीं रहे, जानते नहीं मैं कितना अच्छा कर सकता हूं, ये सब मोह माया में सब लोग मुझे नहीं पहचान रहे, तो ऐसी ईर्ष्या करूंगा, स्पृधा करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे? बताइए, निश्चित रूप से। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, भगवान गीता में बता चुके हैं 12वें अध्याय में कि कौन मुझे प्रिय है, जो सब जीवों से सर्वभूतानां, हम तो भक्तों से क्या किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं रखना, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे। तो हमें इस चेतना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि दूसरे को जब सेवा में आगे बढ़ते हुए देखें तो खूब नाचें, हालांकि अभी शुरू शुरू में आर्टिफिशियल होगा लेकिन प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो कह रहे ना पृथ्वी महाराज, अगर आप वर्णाश्रम का पालन नहीं करोगे, आप अच्छी सेवा नहीं करोगे तो आपका भी बुरा होगा, मेरा भी बुरा होगा। तो अगर कोई और जीव अच्छी सेवा कर रहा है तो उसका भी भला है, उससे उत्साहित होकर मैं अच्छी सेवा करता हूँ, उसका हमारा भी भला है। किसी और को अच्छी सेवा करते हुए मैं ईर्ष्या युक्त हो गया तो मैं तो क्या ही गया। हमारे आचार्यों के उदाहरण शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे हजारों शिष्य हरेक शिष्य मुझसे ज्यादा अच्छा प्रचारक बने और मुझसे ज्यादा बढ़िया प्रचार करे पूरी पृथ्वी पर। क्यों? मुझसे ज्यादा प्रचार करेगा तो ज्यादा से ज्यादा जीव कृष्ण महानुभावित होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा जीव कृष्ण महानुभावित होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। बस भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, श्री रामायण राधिका रमण जी को प्रसन्न करना, अपने को प्रसन्न नहीं करना। ये हम हर योनि में यही गलती करते आए हैं, केवल मनुष्य योनि में ही हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली सुअर मल्ले बड़ा कीड़ा अपने आप को प्रसन्न करता है, यही अंतर है मनुष्य में और निम्न योनियों में। निम्न योनियां अपने आप को ही प्रसन्न करते आती हैं और परमात्मा उनके हृदय में बैठते हैं, उनको पूरी सुविधाएं देते हैं कि अपने आप को प्रसन्न करो, जितना कर सकते करो। लेकिन मनुष्य योनि में ही हमारे पास ये सुविधा है कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए हम जब भी कोई सेवा करें तो हो सकता है बाहरी रूप से हमें वाहवा मिल रही हो, यश मिल रहा हो, लेकिन अंदर से हमें हमेशा अपना विश्लेषण करते रहना चाहिए कि ये सेवा मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं कि अपने झूठे अहंकार को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। तो बार बार हमें विश्लेषण करते रहना चाहिए और अधिकतर हम पाएंगे, बुरा मत मानिए अपने साथ में बता रहा हूं, अधिकतर हम पाएंगे कि हम अधिकतर अपने ही अहंकार की पुष्टि के लिए सेवा कर रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं, वास्तव में हमें बीमारी का मालूम तो होना चाहिए, इलाज तो बाद में शुरू होगा, बीमारी को मालूम होना चाहिए, अब में तो नहीं रहना चाहिए। और फिर हम वैष्णवों से प्रार्थना करें, गोलाम महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हम इस दूषित चेतना से ऊपर उठ सकें और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर प्रयास कर सकें। इसी भाव से भक्ति मोहन ठाकुर जी ने बहुत सुंदर से लिखा है शरणागति में, और वो कह रहे हैं कि
कबे जीव दया है बेहु दया निज सुख भूली सुदिन हृदया भक्ति विनोद कर प्रिया विनाया शियाज्ञा डहला करीबे प्रचार।
कहते हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर विनय पूर्वक दीनता पूर्वक कह रहे हैं कब मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया होगी और मैं अपना सुख भूलकर भी श्री गौर सुंदर की आज्ञा पालन कर प्रचार करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जितने बड़े संत हैं वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मुझ पे दया उदय विकसित होगी और मैं गौर सुंदर की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा अपने सुखों को भूल कर दीनता पूर्वक। तो हमें भी ऐसे गुरु से और आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कब विनम्रता पूर्वक भगवान की सही चेतना में हम सेवा कर सकें। आज के श्लोक से हमें बहुत कुछ ये सीखने को मिलता है कि कैसे टीम वर्क किया जाए। आज पूरे भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी समस्या है टीम वर्क। प्रत्येक जीव अपने आप में अच्छा है लेकिन जब वो समूह में इकट्ठे होते हैं ग्रुप में आते हैं तो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। भौतिक जगत में भी बड़े बड़े सेमिनार किए जाते हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर, और आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं कि हम संस्था में आते हैं सेवा करते हैं सारे भक्त अच्छे हैं, जब इकट्ठे होकर जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपस में क्लैश शुरू हो जाता है। तो ये बताया गया है कि यहाँ अगर पृथु महाराज को ऐसे टीम लीडर देखें तो अपने टीम से वो कैसे कार्य करवा रहे हैं। बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि आप सब सेवा कर लोगे तो मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। वो कोई उनको आदेश नहीं दे रहे, चाहते तो बिल्कुल बहुत ही जैसे कहते हैं डंडे के जोर पर बोल सकते थे, तलवार के नोक पे बोल सकते थे, चुपचाप पालन करो मन था मार ले जाओगे। बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कृपया करके पालन करो, आप पालन करोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो शब्द बदल सकते हैं सरल परिस्थिति काल के अनुसार, लेकिन चेतना यही रहनी चाहिए कि आप किसी टीम के लीडर हैं, यानी कि प्रत्येक टीम के सदस्य के दास। हम स्वामी नहीं है, हम लीडर नहीं है, हम दास। इस चेतना से हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हम श्री राधा राधिका रमण जी को प्रसन्न कर पाएंगे और जितने भी हमारी समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा, ये जीवन भी ठीक रहेगा, पिंडार्थ हम बता रहे हैं समाधान, मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को टेक नहीं है प्रश्न? से गोपियां भी, उनका भी एक ही वो है, लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता करते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमारा कि हम गोपी के भाव में तो नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि असली स्वरूप तो वही है सेवक, आपका मतलब सेवक। जब कृष्ण सेवा कर रहे हैं हम सबकी, तो हमें क्यों नहीं सेवा करनी चाहिए कृष्ण? कब तक हम अपने को विमुख रखें?
Thank you. जगह को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, तो क्या पूरा वर्णाश्रम धर्म पालन करना सही है?
बताया ना कैसे पालन करना है, अथोक्ष ध्येय कृष्ण का चिंतन करते हुए बताया ना, ज्ञान स्कूल में बताया गया हम केवल शुष्क वर्णाश्रम धर्म का पालन करें बिना कृष्ण के चिंतन के, स्थानक भ्रष्टा पदंती है नीचे गिरेंगे। कृष्ण का चिंतन दिखाओ, कृष्ण का चिंतन करते हुए कर्तव्य का पालन करें।
अपने शरीर में एम्बिशियस होना या अपने अहंकार को कुछ करना नहीं,
देखिए जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अपने आप में हमारी जितनी भी डिग्रियां हैं ये जीरो के समान है, हमारा धन हमारा ऐश्वर्य यश सब जीरो के समान है। अगर जीरो के अगर हम एक लगा दें तो उसकी कुछ वैल्यू है, हम दस जीरो भी लगा दें तो उसकी क्या वैल्यू है, जीरो। दस जीरो के अगर हम एक लगा दें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो एक क्या है, कृष्ण। आप जितनी भी डिग्री ले रहे हैं जितना भी कहने का ऊंचा करना चाहते हैं करिए, लेकिन उसको कृष्ण को अर्पण कीजिए, कृष्ण से युक्त कर दीजिए, तो कोई समस्या नहीं है।
भगवान जो अवस्था हम कह रहे कभी ऐसा नहीं था कि अगर फूल में उसने नहीं देखा तो हम पहले ही गुरु अपने शक्तिमान द्वारा में तो हमारा उद्धार क्यों नहीं
हुआ। पहले का प्रश्न है कि ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे या भगवान नहीं थे तो हमारा अगर उद्धार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर बार हम यही गलती करते आए हैं, हम भोक्ता समझते हैं अपने आप, हमने कभी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया। सब देवता युग क्या पता नहीं कितने युग बीत गए, कितने कितने कितनी बारी हम महाविष्णु के शरीर में गए फिर निकले फिर जाए फिर आए, कितनी बारी प्रलय हम देख चुके हैं, कितनी बारी हर बार ये सोचते हैं कि मैं स्वामी हूं, तो स्वामी बनना तो मेरे यहां पर सड़ना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद महाराज की
जय।
चैतन्य महाप्रभु की, सत्यानंद प्रभु की, निदाय गौर प्रेमानंद।